Hi everyone, this is Ajay Chaturvedi. I guess SGR Live Knowledge Foundation is live now, and I see some names that are popping up. So I was invited to actually talk on the science behind mythology, and I think it's a great subject, especially given the times that we are living through globally. You know, a lot of us are experiencing the coronavirus pandemic, and we'd like to understand, you know, things that, you know, sort of are not immediately visible sort of in our own spaces. And okay, hi Milal, yeah, fantastic, thank you. So the idea was, of course, I'm an entrepreneur, and I, you know, do speak about innovation and how people can use that for bettering their organizations, bettering their lives, you know, creating value and stuff like that. But then I have a slightly different approach to innovation, and that's usually connected very deeply with philosophy of a particular place, which is where I usually find that we're able to apply knowledge from our culture, from our civilizations, from, you know, the knowledge that's been left to us by the ancients. And, you know, that, of course, got us to a point where some folks wanted to understand the meanings of a lot of the stories that we've heard of in so-called mythology, which I don't any longer call that, because there is a method to the madness. And once you understand the method, then it's no longer madness. And so for me, it was important to kind of explain to the people, and that's what Mridal and I spoke about. So Mridal from SGR, you know, talk to me about this, and I think that's what the session is about. So I do see some people here now, and what we'll do is quickly talk about the basics, the foundations of how you can you know, start understanding those mythological stories. So first and foremost, I'd like to you know, explain this with an example, with a question that I usually ask people. So if I said a statement like, "Mere paas 10 gurde hain," gurde in English is kidneys. If somebody were to understand this, you know, start to interpret this, they'll translate this statement in English as, "I have 10 kidneys." Now, is this statement factually correct? And is this statement correct? So I'd obviously say the statement is correct. You know, there's nothing wrong with the statement. It's in a statement in Hindi that's been translated to English, and every single word has been translated correct. Now, the correctness of the statement is established with the, you know, fact that it's grammatically correct, language people are able to understand, and things like that. But not everyone understands it the same way. So if you're an English language student, then you understand the statement in a particular way. But if you're not, then you don't understand the English statement. That's one part of it. If you also have knowledge, now I'm talking about, you know, I'm giving a very basic example. If I usually talk about, you know, kidney, most of us think, you know, who have English as a language, as a second or third language, even, you know, first language definitely, would understand, you know, what kidneys are. And so the statement absolutely makes sense, yes. But for somebody who does not understand what kidneys are, they wouldn't understand it. Similarly, somebody who understands mathematics will understand the meaning of 10, but otherwise not. Now, I know this sounds a bit ridiculous and a bit stupid, but this is exactly what's happening in the world today. You know, we're trying to interpret something that's been written by somebody else from a completely different civilization in the limited knowledge that we have with the limited language translations that we have done. And as a result, what ends up happening is we end up damaging ourselves, our own knowledge, our own truth, our own possibilities of that, what could have been, and we completely miss the point. That's sort of what's happened here as well. So I have 10 kidneys is a great statement, correct, grammatically correct statement, but is this statement factually right? Well, you don't know until you check the number of kidneys I have. You know, are they in my body? Are they, you know, stored away somewhere? Secondly, what's the meaning of 10? If you don't know 10, then you really don't have any way to make out. And so this is how the debates have been going. Second, you know, thing is the similar question. How many kidneys do you have in your body? You can't answer this question unless you have an inherent knowledge of biology, as in what the meaning of the word kidneys are. Again, you know that you have 2 kidneys is because you've been told that. You haven't actually checked it. And so, yeah, hi, Sheila. Okay. That's the foundation of it. So in order to understand a lot of mythology, it's a similar foundation that's needed. Except that foundation is something which is more than just language, right? What we have today is we're trying to understand something with our limited knowledge of language that we have and a few other concepts. And we believe that, you know, we've actually got everything right. I mean, we can't even correctly portray history the way it was 50 years ago. Forget, you know, about 1,000 years ago, 2,000 years ago. And initially, I was possibly in the same boat because I used to think the same exact things about, well, yeah, it's all mythology. There is Ramayana, there's Mahabharata, there's all kinds of things, and it's a story. Until it started making sense. So why do I want to talk about this? Is because it is extremely important for the people today to solve the problems that we have today. And it's something which is very relevant in the times that we're in. So I you know, recently have done a few other talks on this topic. So feel free to Google or look up those talks on YouTube to see some of the concepts that I've explained. But now let's get back to the foundations of understanding some of the mythology that is so-called mythology that I no longer call it that. And it makes absolute sense to me, and what are the things that we could actually learn. So I've given a basic example of giving an English statement and how it is interpreted if you have knowledge of English, if you have knowledge of biology, and if you have knowledge of mathematics. These are three subjects that are known in a terminology, the current narrative today. What if there are other subjects that you have no knowledge of? If you don't even know what to look for, you'll never be able to find it. And that's exactly what's happening in today's day and age. And so we're losing out on the knowledge that we could have actually gained from had we known what those other subjects were. Now, coming back to today's day and age, a lot of the things that were demonized for a very specific purpose, you know, which either might have been a very for dominating a particular civilization. It could have been done out of ignorance. It could have been done out of a very, very malified intent while retaining that knowledge themselves. And I don't think they actually did retain the knowledge, or even if they did, they didn't really utilize it. Because if they did, we wouldn't be facing the kind of crisis that we're facing today in the world. So now let's get back to understanding the philosophy. The basis of Hindu, the Sanatan philosophy, is a four-state principle. So it's char avasthaon ki trigunatmak prakriti. It's three principled and in four states. You can't understand, you can't even begin to understand something unless you know that there are these four states. To begin with, let's say, there are four directions. There are four Vedas, there are four yugas. So, normally people would come back and say, well, not just four directions, there are 10 directions. Well, to begin with, you have to at least make four, and then you can get 10 within those four directions. If you don't even know those four directions, then you can't go deeper into the meaning of 10 directions. And those 10 directions is not something that we're talking about right now. So the four states is really where it starts with. And that's the root of Sanatan, the philosophy, right? That's been described everywhere, be it Bhagavad Gita, be it Upanishads, be it Ramayana, Mahabharata. And so that's the foundation of it. Now the four states typically are dharma, artha, kam, moksha, buddhi, siddhi, vriddhi, shuddhi. They are these four states. That's what the Vedic philosophy is all about. So the Vedic philosophy does not limit itself to a bipolar narrative. It is not a left and a right and a right and a wrong and a black and a white and a Republican and a Democrat. It is a four-state philosophy. So in a place like India, you can actually have multiple opinions without really getting blocked or boxed into a particular category. And that's extremely important for today, because the kind of conflicts they're seeing politically, the kind of challenges we are seeing in the economy, the kind of problems that we are seeing in the climate, all relating to sustainability. And what exactly is sustainability, we'll get back to that as well. But coming back to the four states. So these are the four states. Then comes the three principles. The three principles are literally what is what are being used, when we look around at the nature. So the three principles typically are Rajogun, Tamogun, and Satogun. But that's also the Trinity. So it's Ganga, Jamuna, Saraswati. It's Ida, Pingala, Sushumna, the three channels through which the Kundalini travels up from the Muladhara to the Sahasrara. That's why it's Brahma, Vishnu, Mahesh, the Trinity, or the Christian views, Father, Son, and the Holy Ghost. And similarly, we translate this. And so we finally get to a point where, like, what does it mean in nature when we step out? It's really about the Surya, Sun, the solar energy, the lunar energy, and the Earth, Prithvi, which is the mother. When you translate this from, let's say you begin with, I just explained the four states. So you start with Satyuga, Dwapar, Treta, and Kalyug. Now you get back to the way you access a particular problem or solve a particular problem could be Antrik, Mantrik, Tantrik, and Yantrik. When it comes to Yantrik from Mantrik, now I've talked about, you know, things which are very Antrik and Mantrik. So when I'm talking about these three principles, the three principles is what you're using. So you're doing Surya Namaskar, you're doing Chandra Namaskar, you're actually going into a temple, and you know, before entering a temple, you actually take off your shoes or slippers. The reason you take that off is to connect with the earth. Prithvi se jodne ke liye. Now that's Mantrik Shakti, right? When you get to Yantrik, which is the yuga that we are in today, you have plug points, which, you know, you connect your cell phone with to charge it, and you'd find that it has three points as well. Now again, you know, people would argue mine has only 2 points. Yeah, it can have 2 points, minimum 2 points, but it'll have to have a maximum of only 3 points. It can't have more than that. You might have something which has 5 points, but those 5 points are really the two for the big sockets and the small sockets. Anyway, so the idea is that three principles remains the same, because even at the plug point, you have a positive, negative, and a prithvi, earth, which literally helps the computer or the device that you connected to the current, earth itself. And so that's how we begin to understand the philosophy. Now, every single book that's been written has been written with the sole purpose of bringing out or helping someone connect to the absolute truth. Because nobody in the world can make you see the absolute truth. They can only help you take that path, right? And I remember one of the most famous examples, I think Osho had given this, that, you know, when somebody points to the moon and he's saying, you know, look, that's the moon. And if he, agar wo ungli aapko point karke dikhate hain ki chandrama dekhiye wahan par hai, aur uske baad wo ungli hata lete hain, to chandrama wahin par hai, lekin aap uski ungli pe reh gaye. अगर आप में थोड़ी बुद्धि है और आपको चंद्रमा दिखता रहा है फिर तो ठीक है, लेकिन अगर आपको चंद्रमा नहीं दिख रहा है और आप उसकी उंगली देख रहे हैं तो आप सत्य से हट गए. यू हैव टेकन अवे यू नो द अटेंशन फ्रॉम ट्रूथ. एंड दैट्स काइंड ऑफ व्हाट वी आर सीइंग टुडे एज वेल. व्हेन यू नो वी से समथिंग लाइक एमिनेंस इज ग्रेटर देन एविडेंस, इसका महत्व तथ्य क्या है कि आप कोई अगर महान पुरुष है, बुद्धिजीवी है, उसकी बात सुन रहे हैं लेकिन आप फिर सत्य को भूल गए, फिर उसकी बात को सत्य मानने लगे हैं क्योंकि वो आपको सत्य बता रहा है. अब वो हट गया है, मतलब उसने उस समय का सत्य बताया. अभी मैं गुड़गांव में हूँ, अभी 3:10 हो रहे हैं, ये अभी का सत्य है. अब अगर मैं हट गया यहाँ से तो आप जहाँ पर आप हैं वहाँ का सत्य बताएंगे, उस जगह पे उस समय का समय. आप जो मैंने समय बताया गुड़गांव में 3:10 है, ये आप कल नागपुर में बैठ के नहीं बता सकते. विच इज द एसेंस ऑफ ट्रूथ. मैं बहुत आम एग्जाम्पल्स ले रहा हूँ क्योंकि इससे लोगों को समझ में ज़्यादा जल्दी आता है. सो द एसेंस ऑफ ऑल दीज ग्रंथ्स, ऑल द मिथोलॉजी दैट यू थिंकिंग ऑफ इज ब्रिंगिंग आउट दैट ट्रूथ एंड एक्सप्लेनिंग दैट फॉर द नॉर्मल पॉपुलेस. सो आर दीज ट्रू, आर दीज फॉल्स? वंस यू बिगिन अंडरस्टैंडिंग, आई कैन शो यू दैट दे आर ऑल ट्रू. ओके, एक और एग्जाम्पल लेते हैं. अगर मैं मुझे किसी को मैथमेटिक्स सिखानी है और वो 10 साल का बच्चा है, तो मैं उसे बोलूँगा, अगर मेरे पास 2 खिलौने की गाड़ियाँ हैं और 2 खिलौने के ट्रक्स हैं तो मेरे पास कुल मिला के कितने खिलौने हुए? वो बोलेगा 4. उसे रुचि इसलिए आई क्योंकि उसको सडनली दिख रहा है कि कुछ खिलौने की बात हो रही है, यू आर टॉकिंग अबाउट टॉयज. लेकिन अगर आपको ये खिलौने में रुचि नहीं है तो शायद आपको सब्जेक्ट में भी रुचि नहीं होगी. इसी तरह आप अगर किसी को सब्जियों से ज़्यादा लगाव है तो आप बोलेंगे मेरे पास 2 ककड़ियाँ हैं और 2 मूलियाँ हैं, तो मेरे पास कितनी ककड़ियाँ और मूलियाँ या सब्जियाँ होंगी, उस तरीके से आप सिखा सकते हैं. बट द एसेंस इज, मैं सब्जियों और खिलौनों के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ मैथमेटिक्स की, गणित सिखाने की बात कर रहा हूँ। अगर मैं किसी को गणित सिखा सकता हूँ तब तो ठीक है, वो किसी भी एग्जाम्पल से किसी भी माध्यम से मैं उसको सिखा सकता हूँ, लेकिन परम सत्य गणित का है। दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू गेट टू। सो नाउ कमिंग बैक टू द आइडिया कि रामायण क्या है, मर्यादा पुरुषोत्तम राम की कहानी है, हाँ जी, और उसके बाद महाभारत क्या है, महाभारत कौरवों और पांडवों का युद्ध है, महाभारत का युद्ध है, भगवान कृष्ण की लीला है वो एक और युग में है, इसी तरह जो चार ग्रंथ हैं। अब इसको टिपिकली दैट्स व्हाट वी लुक एट, हम लोग देखते हैं और कि भाई रामायण नहीं, वो तो एक मिथ्या है, वो ऐसी है, वो मिथ्या बिल्कुल नहीं, वो एक कहानी के तौर पे आपको प्रस्तुत की गई है, लेकिन उसका तथ्य जब निकाल के देखेंगे वो आपको वैसा ही दिखेगा जैसे उस समय एक्सपीरियंस किया गया था। तो राम को मर्यादा पुरुषोत्तम क्यों कहते हैं, व्हाई इज ही कंसिडर्ड यू नो द मर्यादा पुरुषोत्तम, द मोस्ट सुप्रीम ऑफ मैन एंड द मोस्ट द आइडियल फॉर एवरीवन। नाउ यू कैन स्टार्ट टू गेज इट विद करंट नैरेटिव ऑफ व्हाट यू आर फीलिंग, यू कैन डू दैट, बट एनीवे आपको अगर समझना है तो उसको शुरुआत जब आप करते हैं तो रामायण डज नॉट स्टार्ट विद देयर वाज अ किंग एंड ही हैड फोर सन्स एंड देन दिस हैपेंड। रामायण की शुरुआत मतलब पूरे जो घटनाक्रम है वो शिव महापुराण के बीच से ही होने लगता है। अब राम किसके अवतार हैं, वो कैसे आए, वो सब चीज़ एक तथ्य है, बट मोर इम्पॉर्टेंट इज वो मनुष्य बन के आए। तो श्री राम मनुष्य के रूप में थे, विष्णु अवतार थे मनुष्य के रूप में, और श्री राम यू नो व्हेन द स्टोरी स्टार्ट्स इट टिपिकली स्टार्ट्स विद द बर्थ डिटेल्स ऑफ श्री राम, एंड नाउ श्री राम एक्चुअली हैज द आइडिया ऑफ आइडियल्स ऑफ नॉर्मल ह्यूमन, बट यू नो ही सीइंग दैट दीज आर द थिंग्स दैट वन नीड्स टू अकॉम्प्लिश, सो ही हैज यू नो लाइफ पाथ चार्टेड आउट, बट उसको समझने के लिए आपको कम से कम ज्योतिष का थोड़ा ज्ञान होना चाहिए। यू डोंट नीड टू बी एन एक्सपर्ट इन ज्योतिष, बट यू एटलीस्ट नीड टू अंडरस्टैंड दैट इट्स अ डीप 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 साइंस, राइट? सो द थ्री थिंग्स दैट आई इवन needed to begin understanding is, which I explained, the four state philosophy, so चार अवस्थाएं, त्रिगुणात्मक प्रकृति, so it's you know three principled, and then what do you start to understand? ये आपको स्वस्तिक से, क्योंकि स्वस्तिक के चार आर्म्स हैं, उसका पहले deep rooted meaning समझना पड़ेगा कि वो क्या क्या उसकी अवस्थाएं हैं। संस्कृत जो कि असल में बड़ी मैथमेटिकल भाषा है, इट्स फार मोर मैथमेटिकल देन इवन अ कंप्यूटर लैंग्वेज दैट यू नो वी नो ऑफ ऑफ टुडे, एंड यू नो साइंटिस्ट डिड एक्चुअली कॉन्टम्पलेट दैट यू नो इन ऑर्डर टू इवन बिगेन राइटिंग अ कंप्यूटर लैंग्वेज वी नीड टू फर्स्ट कनेक्ट इट सो डीपली विद ह्यूमन लैंग्वेज विच इज़ मैथमेटिकल विच इज़ लॉजिकल दैट इसको हम सीधे आदमी और मशीन्स के बीच में लिंक करना शुरू कर दें। संस्कृत इज दैट लैंग्वेज, इट इज़ मैथमेटिकल, आई एम नॉट सेइंग इट बिकॉज इट कम्स फ्रॉम द कल्चर दैट आई बिलोंग टू, नो, इट इज़ वेरी मैथमेटिकल वैन यू स्टार्ट टू अंडरस्टैंड इट, एक्सट्रीमली मैथमेटिकल। आप कोई भी मंत्र उठा के देखेंगे, उनके छंद हैं, उनकी गति है, मतलब ऐसी चीज़ें हैं जो आप डिस्प्यूट नहीं कर सकते, दिस इज एज मैथमेटिकल एज द कंप्यूटर स्क्रीन दैट यू आर वॉचिंग मी ऑन एंड इट्स रनिंग ऑन करंट विच इज़ वन एंड अ जीरो, सो दैट्स सो द स्वस्तिक द संस्कृत फाइनली विच इज ज्योतिष विच यू नो एक्सप्लेन्ड। नाउ ज्योतिष इज ए साइंस ऑफ अंडरस्टैंडिंग द लैंग्वेज which the cosmos is speaking to you, and of course there is a method to the madness that I started with. There is always method to the madness. Once you understand the method, there is no longer madness. जब तक आप उसकी मेथड को नहीं समझेंगे तब तक वो पागलपन होगा, जब आप मेथड समझ गए तो पागलपन गायब हो गया। That's exactly what's happening over here. So when you look up, I mean this is what the ancients, this is what our rishis have taught, और वो धीरे धीरे करके इतना ज़्यादा ज्ञान है कि आपको उसके मतलब आप उसमें खो जाएंगे अगर आप मेथोडिकली नहीं जाएंगे उसमें, विच इज वाई पीपल हैव यू नो ईदर लाइक आई सेड ईदर इट वाज डन विद अ मैलिफाइड इंटेंट और इट वाज अ वेरी वेल थॉट आउट क्राफ्टेड स्ट्रैटेजी। आई डाउट इट वाज द सेकंड बिकॉज वी डोंट हैव एनी एविडेंस ऑफ दिस विजडम बीइंग यूज्ड, इट्स बीन यूज्ड बाय अ फ्यू बट यू नो ऑन अ वेरी स्मॉल लेवल, एंड आई थिंक दैट दिस इज वेयर वी आर स्टैंडिंग राइट नाउ। तो आप जब शुरुआत करें तो कम से कम the science behind these things you have to understand. So the four states, which is Swastik, the three principled, which you know, I've explained, and how you start to understand different things. Now, I can't go into the deep, deep, you know, secrets of Ramayana or Mahabharata or Bhagavad Gita, but I'll give you a very quick couple of examples. आप अगर critical thinking करते हैं तो critical thinking ये नहीं है कि मैंने Excel spreadsheet देखी और मुझे उसका business model समझ में आ गया. That's one very small part of critical thinking. Critical thinking starts with the deep understanding of even time. As a human, we can't control time. We can barely think we can measure time. आपको समय हमेशा हृदय से प्रतीत होता है, but you can, you know, measure it with your mind in terms retrospectively to explain concepts and phenomena. But otherwise, whoever says that they can control themselves or their destiny, I very much doubt it, because ask them, can they control time? If they can't control time, go forward and backward in time, regardless of where the world is going, then you don't control time. And so long as you don't control time, you have no control of the narrative. क्योंकि आप उसके बाद केवल studies कर सकते हैं. भाई यहाँ पर मैंने something as stupid as क्या कल सूरज उगेगा? ठीक है भाई देखते हैं. आप देख ही सकते हैं. आप उसको बदल नहीं सकते. You wake up tomorrow morning and the sun rises, fantastic. You know, if it does not rise, there is no way for you to go back and you know check. But then if it doesn't rise, there's also a possibility that you're you know not awake or you're unfortunately maybe dead. तो उन चीजों को समझने के लिए आपको ये principles कम से कम सबसे पहले समझने पड़ेंगे. ये principles basic principles हैं. Now coming back to some very you know trivial simple examples कि आप इतने दिनों से पूरा हफ्ता फॉलो करते हैं. आज सोमवार है, आज मंगलवार है, बुधवार है, बृहस्पतिवार है. आप कभी किसी से पूछे भैया आप ये रिलीजियसली बड़ा ये कर रहे हो और आप मंगलवार को मीट नहीं खाते हो, मंगलवार को आप ऐसे करते हो, तो ये क्यों करते हो? और वो कहेंगे नहीं क्योंकि ये हनुमान जी का दिन है, ये शिव जी का दिन है. यार वो एक आस्था लेवल पे है, लेकिन आप उसके डीप सीटेड जो बिलीफ सिस्टम है उसमें जाइए. फर्स्ट ऑफ ऑल एवरी बिलीफ हैज़ ए वेरी साउंड फंडामेंटल एट द बॉटम. जब तक वो नहीं होगा दैट बिलीफ विल नेवर डिलीवर. अदरवाइज इट्स जस्ट वो तो अंधविश्वास हुआ. अंधविश्वास नहीं है, अंधविश्वास रखने भी नहीं है. सो when you start to understand this, you basically ask, so why is today Saturday? Today is Saturday, right? Yeah, din hafte mein 7 hi din kyun hain? 7 se zyada kyun nahi hai? 8 din kyun nahi ho sakte hamare? Kya humne logon ne 10 din nahi rakhe ek hafte mein? Aur agar 10 din hote to shayad pure saal mein kam hote. Kya saal mein 360 din anivary hain? Is it possible to have more than 360 days? Is it possible to have less than 360 days? Why do we have only 12 months? Why not 13 months? Why not 11 months? बट बाय द वे हम लोग जो कैलेंडर फॉलो करते हैं वो ओरिजिनली 10 महीने का कैलेंडर था जो कि रोमन कैलेंडर है. तो रोमन कैलेंडर में अभी भी 7, 8, 9, 10 सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, यही चार जो आखिरी के महीने हैं. लेकिन बाद में उन्होंने दो और महीने डाले जो जून और जुलाई थे जो 12 महीने को कम्प्लीट करते थे. तो ये बेसिक फंडामेंटल्स. अब आप सोचिए कि आज का दिन जो है सैटरडे है क्यों है, इसका अर्थ क्या है, हाउ इज़ दिस रिलेटेड टू the temples that we go into. Hum pehle baat to joote utarte hain mandir mein jaane se pehle, uska bada scientific reason hai. It is not because you take off your shoes to clean the keep the temples clean. That's a part that is served, but that's the only purpose. Second, kya ye respect ke liye kiya jata hai? Agar respect ke liye karte hain to aap jitni baar apne parents ke paas samne jaiye to chappal joote utariye, wo to nahi aap nahi utarte hain. So why is it really being done? It is being done because you have to connect with earth. That's one. Now jab aap andar jaate hain kisi bhi mandir mein to wahan par navgrah ke प्रतिमाएं देखते हैं. वो नवग्रह क्या है? वो नवग्रह सूर्य, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, चंद्रमा, राहु और केतु. ये 9 ग्रह हो गए. सो राहु और केतु इसमें ऑफकोर्स इमेजिनरी प्लैनेट्स हैं जो कि नोड्स रिप्रेजेंट करते हैं. जब मून ट्रांजिट करता है पृथ्वी के दोनों तरफ से, ऊपर से और नीचे से, तो उसको राहु और नीचे को केतु बोलते हैं. हमने सबने कहानी सुनी है, जो पढ़ी है विष्णु पुराण में, जो राहु केतु का गला काटा था. तो राहु सिर है और केतु धड़ है. खैर वो चीज़ें बहुत डीप फिलॉसफी है तो उसमें नहीं जाएंगे. बट वीक डेज का इनसे क्या संबंध है? सारे वीक डेज इज नॉट द ऑर्डर दैट वी स्टडी इन ज्योग्राफी. इज मर्करी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, इस तरीके से है. लेकिन आपके वीक डेज आर सन, मून, मार्स, मर्करी, जुपिटर, वीनस, Saturn, which is Saturday, and then finally Sun. So this order is not the same as what we have studied in geography, and that's something to think about. तो इस चीज़ को जब आप समझेंगे उसके बाद आपको समझना शुरू होगा कि अच्छा इसीलिए इनका ये order था. तो सबसे पहला जो दिन है वो सूर्य का है. क्योंकि सूर्य हमारे, जब आप जियोसेंट्रिक मॉडल से बात करते हैं, तो जियोसेंट्रिक मॉडल मतलब मेरे चारों तरफ ब्रह्मांड घूम रहा है, फिर हमें लगता है कि पृथ्वी के चारों तरफ सूर्य घूम रहा है, पृथ्वी के ही चारों तरफ चंद्रमा भी घूम रहा है। असल में पृथ्वी के चारों तरफ नहीं घूम रहे, हम इस तरफ घूम रहे हैं। लेकिन दो पर्सपेक्टिव्स हैं, एक है हीलियोसेंट्रिक मॉडल, जिसमें आप ऊपर से अगर किसी को दिखाएं तो ये ऑर्डर है, ये पृथ्वी है, उससे पहले वीनस है, उससे पहले मरकरी है। लेकिन अगर किसी को जियोसेंट्रिक मॉडल दिखाने, आसानी से समझाने के लिए, कि मैं अभी कहाँ बैठा हूँ, मैं कंप्यूटर के सामने बैठा हूँ, आप कहाँ बैठे हैं, आप भी कंप्यूटर के सामने बैठे हैं, लेकिन पर्सपेक्टिव है ये, आप अपने कंप्यूटर के सामने बैठे हैं, मैं अपने कंप्यूटर के सामने बैठा हूँ, लेकिन हम एक दूसरे को देख पा रहे हैं, उस तरीके से चीजें हैं। तो ये पर्सपेक्टिव का मामला है। तो आपको एक बार जब पर्सपेक्टिव समझ में आया, फिर आपको समझ में आएगा, अच्छा ये पर्सपेक्टिव तो ऐसा है, लेकिन जियोसेंट्रिक मॉडल से जब मैं देखता हूँ तो मेरे चारों तरफ सूर्य कितने दिन में परिक्रमा करता है, हालांकि दिन भी रिलेटेड सूर्य से ही है, 360 दिन में, चंद्रमा 30 दिन में, तो चंद्रमा सबसे कम टाइम पीरियड में परिक्रमा करता है और सूर्य सबसे ज्यादा, इसलिए चंद्रमा का पहला दिन है। उसी तरह मंगल दूसरा है, फिर बुध तीसरा है, फिर बृहस्पति चौथा है, फिर शुक्र पांचवा है, फिर शनि छठा है। तो ये ऑर्डर ऑफ द वीकडेज है। आप ये समझेंगे फिर आपको धीरे धीरे समझ में आएगा, ये बहुत डीप थोड़े कॉन्सेप्ट्स हैं ज्योतिष विद्या में, जहाँ गर्भ कारक जो होता है वो पहला गर्भ से जो पहला बच्चा हुआ उसको वो उसका गर्भ कारक सूर्य है। तो इसी तरह राम जो है सूर्य का प्रतीक है, तो भरत मंगल का प्रतीक है, सॉरी भरत बृहस्पति का प्रतीक है। उसी तरह महाभारत में देखेंगे तो कर्ण सूर्य के हैं, युधिष्ठिर बृहस्पति के हैं, भीम केतु के हैं। तो ये ऑर्डर एक और कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन है, वो मैं उसमें नहीं जाऊंगा। मैं केवल आई वॉन्ट टू इंस्टिल दिस क्यूरियोसिटी इन द पीपल टू स्टार्ट फाइंडिंग आउट देयर इज अ साइंटिफिक रीजन फॉर थिंग्स दैट वी डू। It's just that you don't know the science. Going back to this very first statement of what I explained, you know, how many kidneys I have in my body is a statement that you can understand if you have an inherent knowledge of mathematics and of basic biology, or somebody has told you. Otherwise, you can't understand, you can't make sense of head or tail. English ke perspective say a statement perfect hai, biology mein it might not be perfect. If I said, you know, I have 50 kidneys in my body, biologically it does not make sense, because you'd say every human has only 2 kidneys. So you get the idea. So that is how we determine. Now weekdays आपको समझ में आया, तब आपको समझ में आएगा, अच्छा weekdays के हिसाब से फिर ये सूर्य हैं और फिर ये बृहस्पति हैं, तो ये you know गर्भ कारक। But this is not just happening with in Ramayana. This is exactly how the science was taught, and this is what you start to see manifest in people's character. तो राम सूर्य हैं, right? And so you start to understand that you're basically worshipping the sun. You're worshipping a form of the sun. This is one part of it. So I'm getting some questions here. I'll answer these in a few minutes. The second part, you know, so that's why are there 7 days in a week? How is it related to the economy? Because, I mean, right now we follow the weekend, Saturday, Sunday. Well, Saturday, Sunday is a very, very recent concept. Pichle 50-60 saal se applicable hua hai. Usse pehle, nobody really observed Saturday, Sunday in a way that we do now. पहली बात, हम तो लूनर कैलेंडर फॉलो करते थे, राइट, विच इज फॉर यू नो मच मोर स्पिरिचुअल पर्पसेस, बट द लूनर कैलेंडर हैज यू नो ऑफ कोर्स रविवार एंड शनिवार एंड इतवार, बट दोज थिंग्स आर फॉलोड डिफरेंटली बाय डिफरेंट प्रोफेशंस ऑफ पीपल। तो जैसे मंगलवार है, मंगलवार को नाई और मीट वाले बंद रहते हैं, बिकॉज वो क्षत्रिय है, चाकू और औजार का इस्तेमाल कर रहे हैं, सो दे यूज दैट डे टू rest their weapons and you know they clean their knives and clean their jo auzar wagaira hain, which is the reason why you know Tuesday is typically used by the people to sort of keep their shops closed. Similarly, the jewelers are closed on Wednesday. That's primarily also the reason why most of the people end up going to a temple on Guruvar, because it is considered guru, it's sacred for the guru, right? Now these are the things, you know, which you start to understand. It's a very basic foundation that you need to have to begin understanding that, you know, the essence of the story. Now coming to the, there are 12 months in a year. Why are there 12 months in a year? Why should they not be 13 months? But then you start to experiment and understand deeply that when you, again, consider the, you know, solar system, the cosmos from a geocentric perspective, from my own perspective, I'll see that the number of times the sun and moon paths cross each other is 12. It's not 13. It's not 11. That's the reason you can have only 12 months. That is the reason why you have 12 poses in a Surya Namaskar. Because those 12 months are representative of the Bara Aditya, Dwadash Aditya. Wahi hai na, Dwadash Aditya. So those 12 Adityas are also the 12 sun signs. Jo rashiyan aapko Mahavishnu ke charon taraf dikhti hain, wo basically 12 rashiyan hain. Wahi rashiyan sare vowels mein bhi aati hain. So isliye aapke number of vowels in Sanskrit and Hindi, the basic ones, are A, A, I, E, U, U, A, I, O, Au, Am, A, jo ki Om banta hai. That is how the science is connected, right? Scientific thinking has little to do with the language and more to do with the way you're thinking, the way you're understanding things, the way you're questioning things. If you don't question it, you don't understand it. If you don't understand it, it becomes a blind faith. Then you're really not doing it right. You know, aap jab ek bar pehli bar apna phone plug in karte ho, you have to plug in the right pin in the right socket. You can't plug it in some other way or make extra holes and expect it to work, because that is what blind faith is. Ek bar aap manual padhte ho, us cheez ko samajhte ho, then you start doing things the right way and then you get it. Yeah, this is perfect. You know, this is how you do it. So, isi tarike se hum nature se connect karte hain. Isi tarike se nature se connect karke, we start to understand those stories which now has been termed as mythology. So, now, and I'm getting a few questions here, but this is what I'm about to explain. Now, Ramayana is a story of Maryada Purushottam Ram. So, it starts with Ram and the birth details of Ram. Ram is Pratik of Surya, right? And that is where you start to unravel the mysteries of how the person will be. Wo Maryada Purushottam hai, Karma Yogi hai, Dharm ki raah pe chalenge, right? You can't gauge his life by the current standards of living that we have in today's world. That's, you know, entirely determined by social media, the way we're going. But agar aapko dharm ki raah maar pe chalna hai, you'll have to understand things in their particular light. Right? Similarly with Mahabharat. Now, the basic idea of Ramayana or Mahabharat or the Upanishads or anything is to explain dharma to people. So, dharma kya hai? Dharma is not something, you know, as complicated, which can be, you can keep writing pages and pages and pages, but on the flip side, it's something very simple. It's about truth. What is dharma? It's truth. So, what is the truth? Well, you know, when you're thirsty, can you explain the taste of water to me? Or can you explain the feeling of thirst to me? You can't, right? Aap kitna bhi scientifically bolo, aap kitne bhi shabdon mein explain karne ko, lekin jab tak mujhe experience nahi hoga, jab tak mujhe atma gyan nahi hoga, jab tak mujhe pratyaksh praman nahi milega, tab tak mujhe samajh bhi nahi aayega thirst ka matlab kya hai, ya taste of water kya hai, right? This is dharma. What is taste of water? It's dharma. Water's dharma is to stay liquid and to quench the thirst of people and, you know, act like water. If it's not doing that, then it's not water. So, pani ka dharma hai, lekin aapko samajh mein nahi aaya. Yes, that's true. So, Ram was never separated. Well, you know, this is, I don't want to, you know, thank you, Ronald, for this question. I didn't want to, you know, go so deep, because I'm guessing, or I'm hoping that people, you know, start doing some research, because agar main us चीज को अभी प्रकट कर दूंगा तो लोगों को ना तो उसको समझ भी आएगा, वो इनफैक्ट इसका फिर बहिष्कार करने लगेंगे, विच इज वाई यू नो. ओके, परफेक्ट. सो लेट मी यू नो एक्सप्लेन दिस बेसिक कॉन्सेप्ट. तो धर्म का उनको अर्थ समझाने की कोशिश करिए. तो धर्म क्या है? रामायण अगर आप देखें, वो पति धर्म है. इट्स अबाउट पत्नी धर्म, पुत्र धर्म, पितृ धर्म, मातृ धर्म, मित्र धर्म. दुनिया भर के धर्म का एक तरीके से वर्णन है, क्योंकि आप कभी भी सही गलत की डेफिनेशन, जो मैंने पहले शुरू किया था, इज नॉट येस और नो, राइट और रॉन्ग की डेफिनेशन भी कर सकते हैं आप. मतलब आप अपने धर्म का पालन कर रहे हो, ये केवल आप ही को पता चल सकता है. तो पत्नी धर्म क्या है भाई? एक पत्नी के साथ रह के पूरा जीवन का सार निकालना, यही पत्नी धर्म. ये पति धर्म ये है. मित्र धर्म क्या है? पुत्र धर्म क्या है? पितृ धर्म क्या है? तो इसमें पितृ धर्म भी है. राम ने सबसे पहले पितृ धर्म का पालन किया. सीता ने राम के साथ वनवास जाके पत्नी धर्म का पालन किया. तो पत्नी धर्म अब एब्सोल्यूटिज्म से नहीं है. उनके बीच में क्या कम्युनिकेशन था वो आपको समझना पड़ेगा, उसको वो सही है या गलत है आप अपने मापदंड से नहीं ले सकते और आज के कॉन्टेक्स्ट में बिल्कुल भी नहीं ले सकते। लेकिन इसको अगर बेसिक चीज से समझा जाए, अगर मैं एक ग्वाला हूँ, मेरे पास एक गाय है, छोटा सा बछड़ा है और मैं बछड़े को खुला छोड़ रहा हूँ, और कोई और इंसान है जो कि माली है, वो खेती कर रहा है, अब वो पेड़ पौधे उगाता है एंड ही इज जेन्युइनली ग्रोइंग दिस थिंग्स। सो मान लिया उसने एक आम का पेड़ लगाया, तो आम का पेड़ छोटा सा पौधा निकला और मेरा जो बछड़ा है वो जाके आम के पेड़ की पत्तियां खाने लगा। अब अगर वो बछड़े को मारेगा एंड ही प्रॉब्ली एंड्स अप हर्टिंग द काफ, देन इज ही राइट और इज ही रॉन्ग? वेल टेक्निकली ही इज राइट, बिकॉज वो उसके पौधे को नुकसान पहुंचा रहा था, उसका धर्म पौधे की रक्षा करना था, पौधे को बड़ा करना था। एम आई राइट इन देन यू नो मे बी फाइटिंग बैक विथ हिम? एब्सोल्युटली, बिकॉज अगर मैं उस वो मेरे बछड़े को मार रहा है, अगर वो मार के हटा दे ठीक है, लेकिन अगर उसको हर्ट करेगा, देन आई हैव ऑल द राइट टू यू नो फाइल अ कंप्लेंट अगेंस्ट हिम और डू समथिंग व्हिच इज यू नो राइटफुली डन विद द लॉ ऑफ द लैंड। बट ये धर्म है, इसमें एब्सोल्यूटिज्म कहीं नहीं है, इसमें आप कहीं ये नहीं कह सकते कि आपने ये जो किया सही किया, ये जो किया गलत किया। मैं अपनी जो चीज जिसकी रक्षा कर रहा हूँ वो धर्म है, right? That's so. If I'm a Mali and I'm protecting my plant, then I'm absolutely doing the right thing. Because if I'm not doing that, then I'm not doing following my dharma, right? तो राम ने क्या-क्या धर्म के पालन किए? पितृ धर्म का पालन किया, पति धर्म का पालन किया, भ्रातृ धर्म का पालन किया, मित्र धर्म का पालन किया, और इस तरीके से मर्यादा पुरुषोत्तम बने, क्योंकि हर जगह उन्होंने धर्म का पालन किया। Now people, you know, come back with asking lots of, you know, very stupid questions or, you know, very judgmental questions that this, you know, this is not right and this is not wrong, this is wrong. You know, for example, they judge on Sita's character or, you know, how, you know, Sita's whole life went. I've had this discussion. See, these are things which are explained just by a life. You cannot judge their life with what you're going through right now. Is it's as bad or as good as saying that I'm going to start judging Sunny Leone's life. Does she have a good life? Well, she did what she wanted and she's, you know, absolutely thrilled with what she's doing right now. She has to adopt children because she genuinely believes that if she had children that, you know, they wouldn't be able to face the world with what, you know, the profession that she's had. She's faced it. She's brave enough to accept it. Now, would she want her kids, like biological kids, to, you know, face the same reactions? I'm not sure. Is she doing the right thing or the wrong thing? I genuinely feel she's doing right what she feels right, right? So long as she's not, you know, compromising her own ideals and she's not the one who's, you know, feeling sorry for it or, you know, has to hide her face for it, if she's ready to stand up and, you know, talk about this as her truth, well, that's really her truth, right? Pani ka satya kya hai? Wo geela hai. Agni ka satya kya hai? Wo garam hai. So aag wahi hai. अगर आग जलाएगी नहीं तो आग अग्नि नहीं है, उसका धर्म जलाने का है, जलने का है, जलाने का है। सो दीज आर द थिंग्स दैट यू अंडरस्टैंड नाउ राम एंड सीता। व्हेन इट कम्स डाउन टू इट, यू नो देयर आर डिफरेंट लेवल्स दैट यू अंडरस्टैंड दिस इन। तो अगर आप राम और सीता की जर्नी जो शुरू करेंगे, दैट्स लिटरली पुरुष और प्रकृति, शिव शक्ति, यही है ना? तो वो अलग हैं टेक्निकली, यस, दो फिजिकल बॉडीज हैं, बट आर दे वन? यस, बाय द सोल दे आर यूनाइटेड बिकॉज दिस इज वॉट वॉज डेस्टिन्ड टू। सो टिपिकल राम इज महाविष्णु, भगवान विष्णु, श्री विष्णु, एंड माता सीता इज लक्ष्मी, एंड दिस इज वेयर यू नो वीव कम टू। सो ओके, सेकंड क्वेश्चन, आई एम जस्ट एड्रेसिंग क्वेश्चंस नाउ। यस प्रणाल, okay, some questions. I'm scrolling through now. Yes, so again, this is something, you know, which is explained by many, many people. I'd like to explain it a simple way. First of all, there are no absolutisms, okay? And फॉर मी देर आर नो बिलीव्स, नाउ देर इज ओनली प्योर अंडरस्टैंडिंग. एक बार आपको अंडरस्टैंडिंग होगी तो आप इस चीज को बता सकते हैं. सो फॉर एग्जाम्पल यू हैव टू सॉल्व अ प्रॉब्लम. अगेन मैं बड़े सिंपल एग्जाम्पल्स दूंगा, सिंपलिस्टिक एग्जाम्पल्स दूंगा. इसका ये मतलब नहीं है दैट द थिंग्स दैट आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन आर सिंपल. इट्स जस्ट दैट आई एम ट्राइंग टू गेट योर क्यूरियोसिटी टू अवेकन. बिकॉज मैं कितना भी बोल लूँ, कितना भी समझा लूँ, आप फाइनली समझोगे तब जब आपकी दिमाग की बत्ती चलेगी. वो दिमाग की बत्ती चलाने के लिए मैं एक सिंपल सा एग्जाम्पल दूंगा तो आप उस डायरेक्शन में सोचना शुरू करोगे. अदरवाइज यू कांट अंडरस्टैंड दी कॉन्सेप्ट दैट आई एम एक्सप्लेनिंग. You know, if I keep asking the question 2 plus 2 is how much in a English language class, to mujhe shayad kabhi jawab milega nahi. Matlab, again, you might logically be right saying, of course, you can get the answer, yeah, for something simple as 2 plus 2. But if I were to put a, you know, differential calculus question, then, you know, I might not get the answer. And that answer I'll get from a mathematics class. It's the same thing here. So coming to, you know, the core principle of, somebody's asked, you know, Hinduism is an idol-centered religion. Is there any core principle or of the consequence to science? See, you have to understand it from this perspective. If I give you a question, let's say, as simple. Again, I'll use very simple questions. Please don't go by the quality of the question. Just look at the example as an example. So if I give you a simple question as 2 plus 2, there are, you know, how much is 2 plus 2? So you immediately answer 4. Now there are technically 4 ways you could have done it, right? You could have done it mentally. You could have just like 2 plus 2 is 4. How do you know that? Well, you know, I've done the mathematics. Okay, fantastic. The second is you could have done it on your fingertips. The third is, assuming that it's not just as simple as 2 plus 2, it's a little more complex. You could have done it on a pen and a paper, right? Or you could have done it on a calculator. There are different ways of accessing the intelligence by different people, whatever they're comfortable with. And this is how we are connecting to the cosmos. Now, through a cosmos, how are you connecting with the universe? You're not connecting with your limbs. You're not connecting with your hands. I mean, you're able to touch people and trees and, you know, things. But the real way you're able to connect is by your breath, by your thoughts, and by sounds. Because you can hear things which are far, far away when you tune in, which you can't possibly do with your hands and, you know, feet. Now, these are different ways of connecting. When you understand the whole idea of prana pratishtha, what is the power in an idol, it's not something, I mean, how do people fall in love? Jo bhav hota hai, you know, whether it's a, you know, great scientist, whoever, I mean, people including Albert Einstein, you know, Dr. Hawkins, whoever you name, these guys all fell in love. What was the science behind falling in love? People might call it something as simple as chemistry, but there's something deeper. That deeper science is what leads you to dharma, right? In certain examples, when you're coming to, let's say, idol worship, is there only idol worship? No. There are, you know, other forms of worship. They could sit with, you know, sitting and focusing on your third eye. But then to make it easier for the people, to make it easier for the masses, you do have idol worship. The science behind it is again, deeper, as deep as doing prana pratishtha. When you take a simple piece of iron and ionize it by wrapping a, you know, wire around it, it becomes magnetized and it starts to conduct. That's a simplistic way of saying. If you were to do that with the human energy, with the divine energy, and you channel it and you put it in the idol, that becomes a live idol. And so, you know, again, the thing to that, you'll start understanding if you first even start practicing this. Have you gone to a temple? Yes, no, okay, yes. Did you take off your shoes? If you did you even start to feel? You know, I try to explain this because I've lived in a very, very objective, materialistic world. When people say, well, I live in nature. Well, you know, you do live in nature, but how much are you able to connect? Are you able to really, really connect and breathe in with the nature? You know, are you able to sort of feel what the whole nature is going through? And the moment you're able to communicate, but you'll be able to start doing that when you start to connect with nature. How are you doing that? Take off shoes, you're walking on the earth. So you could do that as much as, you know, maybe early morning in a garden. Now you get that. Then you get to the Navagrahas. You start to understand and connect with the energy there. Then you start with the sunrise. Then you start to understand, you know, what the whole idea of sandhyas is. You know, what is the midpoint of the sun rising or the sun setting or the midday or the midnight? And then, you know, those are again 4 points. When you start to get that is when you'll start to understand the deeper fundamentals of idol worship as well. What the idol is, what is it doing, what is it not doing, right? A lot of people say that, you know, temples, churches, gurdwaras, they're all the same. They're actually not the same. Temples have a very specific energy. And typically, they're not places of congregation. They're actually places of experimentation. If you're able to go there and connect, that's a very, very powerful thing. So, yeah, over to the next question. I hope that was good, Miral. Good afternoon. Good. All right. So I see that I have no more questions. Yes, absolutely. Today's science and mythology is relevant. Absolutely. See, this is what I was trying to explain to you, that, you know, you can solve a problem once you even begin to understand. I started with this premise. That's the whole idea, that people think that, you know, we're in science, the age of science. We have always, science is less to do with language and more to do with the way you think. Agar aap 2 aur 2 4 bol rahe ho aur 2 plus 2 4 bol rahe ho, lead ek hi cheez ko kar raha hai. You're eventually able to understand why, you know, you're doing it. I mean, आप दो केले और दो सेब लोगे तो आपके चार फल हैं. अगर आप दो ट्रक और दो बसेस को लाओगे तो आपके चार गाड़ियां हैं. ये सवाल एक ही है एग्जैक्टली, अगर आप मैथमेटिक्स के व्यू पॉइंट से देखो. लेकिन आप सरकार के व्यू पॉइंट से देखोगे तो एक तो सब्जियां हैं, दूसरी वाली गाड़ियां हैं. इट्स डिफरेंट, राइट? बट द रूट इज द सेम. इट्स द सेम थिंग दैट यू कम बैक टू इज मिथोलॉजी. अगेन, द मोमेंट यू कॉल इट मिथोलॉजी, यू एक्चुअली टेकिंग अवे द मीनिंग. यू हैव टू अंडरस्टैंड द काइंड ऑफ प्रॉब्लम यू आर सॉल्विंग. मैं आपको करंट डे एग्जांपल देता हूँ. फेसबुक, ट्विटर, ऑल दीज प्लेटफॉर्म्स, दे यू नो आर फेस्ड विद द मैसिव चैलेंज ऑफ व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग. सी, दे आर एब्सोल्यूट राइट्स एंड एब्सोल्यूट रॉन्ग्स. यस, इज किलिंग समबडी राइट? एब्सोल्यूटली नॉट. यू हैव टू यू नो कंडेम इट. व्हाट वाज द किलिंग फॉर? हु वाज इट यू नो डन बाय? यू नो इज इट बाय लॉ ऑफ द लैंड एंड थिंग्स लाइक दैट. अगेन, दे आर वेरी वेरी इंट्रिकेट डीप कॉन्सेप्ट्स. But before starting to jump up and reacting, you need to first start to understand what the reality is. And that reality could be understood only when you start to understand nature. You know, the way people want the nature to be is not the way they are. You know, it's possible. It can only be that we can start becoming more like nature. If we don't, then we are unsustainable. Then we are like really losing out on, you know, our own essence. And so once we understand the roots that we're coming from, which now we're, you know, terming as mythology, it's not. That's the foundation of the society. Wo foundation se hi aapke tyohar bane. But wo tyohar are deeply related to the nature itself, because that's how the revolutions around the sun are, you know, leading us to. To jab aap uski relevance samjhe, jab aap uske tathya ko samjhe, usi ke baad un festival se economy bani. Aur is economy bhi aap abhi practice kar rahe ho things like science. So now let me go back to us in today's world of science. Is, you know, so-called mythology relevant? Absolutely is. Ab aap maan liya basant utsav kab aata hai? Basically, that's the change of seasons around February, because that's the time when bhavre phoolon pe jaake unko pollinate karte hain aur usse shahad banate hain. That's typically the reason when, you know, they say Kamadeva is the one who's influencing this and running the whole show. But then we celebrate Valentine's Day on 14th February. All we have done is we fixed a particular point, which is not. Kyunki Basant Utsav hamare liye ek samay pe aata hai, kisi aur ke liye thode aur aage samay pe aata hai, thode aur ke liye kisi aur samay pe aata hai. Jis tarike se we celebrate Uttarayan starts on 14th of January. Us parv ko hum log Makar Sankranti bolte hain. But typically the way it is celebrated is, what is Makar in Sanskrit? It's Capricorn. इन संक्रांति इस संक्रमण. तो सूर्य मकर राशि में अगर संक्रमण कर रहा है, इट्स मकर संक्रांति. बट टिपिकली व्हेन यू स्टार्ट लुकिंग एट द वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी, द सन इज एंटरिंग कैप्रिकॉर्न ऑन 22nd दिसंबर. नाउ इज दैट ट्रू फॉर अस? नो, वी आर टिपिकली देन सेलिब्रेटिंग मकर संक्रांति 15 डेज और 20 डेज बिफोर, व्हिच इज नॉट राइट. सो व्हेन यू स्टार्ट टू अंडरस्टैंड दैट, यू सडनली गेट पर्सपेक्टिव. दैट साइंस कैन बी अप्लाइड टू द प्रिंसिपल्स दैट आर ऑन द ग्राउंड. अगर वो आपने प्रिंसिपल्स ऑन द ग्राउंड चेंज कर दिए हैं तो फिर आप उसको मेथोलॉजी बोलने लगे बिकॉज यू नॉट सीइंग द राइट थिंग. सो इन टूडेज डे एंड एज और एनी डे एंड एज इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड वेयर योर रूट्स आर. वो रूट्स हमारी जो हम मेथोलॉजी से सोच रहे हैं वो मेथोलॉजी नहीं है, वो बहुत साइंटिफिक डॉक्यूमेंट्स हैं. उनको समझने के लिए हमारे पास उतना अभी विड्थ नहीं है. जब आपके पास वो विड्थ आएगी, जो मैंने बेसिक प्रिंसिपल्स दिए हैं स्वास्थ्य संस्कृत और ज्योतिष, उस चीज़ को समझने के बाद आपको उसके फाउंडेशन प्रिंसिपल समझ में आएंगे, फिर धीरे धीरे बिल्डिंग ब्लॉक समझ में आएंगे, देन इट बिकम्स वेरी वेरी क्लियर. डू यू नीड टू बी अ प्रकांड पंडित इन दिस? नो, यू कुड बी एनीवन, बट आपको बेसिक सेंस ऑफ प्राणायाम होना चाहिए, बेसिक सेंस ऑफ कनेक्टिंग विद नेचर होना चाहिए. अगर आप जमीन पे चले ही नहीं है तो आपको पृथ्वी कैसी है पता ही नहीं चलेगा. सो इट्स थिंग्स लाइक दीज. सो बट बैक टू योर क्वेश्चन, इज साइंस इन टुडेज डे ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इज इट रेलेवेंट? एब्सोल्युटली यस, इट ऑलवेज विल बी. Is that good? All right, any others? Watchers in cosmos. I'm sorry, I don't understand this. Please tell me, sir, how watchers in cosmos, sir? Yeah, what does this question mean? Please, can you explain this better? Watchers in cosmos, kaun hai? Is that a show? Who are the watchers in cosmos? See, I'm not sure what you mean, but I think, you know, if you mean, you know, this meaning is by astronomers and astrologers. See, there are two perspectives to this. Again, you know, agar aap, jaise maine examples diye abhi, bahut simple examples hain, lekin agar aap isko actual life mein dekhenge, to aapke examples har roz, har kshan mein, aapke examples yahi chal rahe hain. Nothing is changing. You know, I can give you a statement which you can understand at different levels depending on your knowledge of different subjects that are expected of you to understand in that statement. तो अगर मैंने जैसे किडनीज का एग्जांपल दिया, आपको बेसिक बायोलॉजी नॉलेज, बेसिक मैथमेटिक्स नॉलेज होगी, तभी आप आई हैव टू किडनीज इन माय बॉडी का सेंस बना सकते हैं. अदरवाइज यू विल बी टोटली लॉस्ट, व्हिच इज व्हाट इट इज ओवर हियर एज वेल. इंडिया हैज ऑलवेज हैड, हमारा ट्रेडिशन ही ये है जो मैंने आपको वीकडेज की थियोरी बताई. ये वीकडेज की थियोरी बृहद पराशर होरा शास्त्र में, जो कि कम से कम 6,500-7,000 साल पहले लिखी गई थी पराशर मुनि के द्वारा, उसमें एक्सप्लेन्ड है. उसके दूसरे अध्याय के तीसरे पन्ने पर अगर आप उसको पढ़ के समझेंगे, मतलब ये तो सेकेंड चैप्टर के थर्ड पेज पे ही इतनी बड़ी थियोरी है जो हम आज इसको मिथ्या समझ रहे हैं. सो दे आर एब्सोल्यूट साइंसेस, दे आर एब्सोल्यूटली देयर. यस, एब्सोल्यूटली, वही ऋषिज है ना, यही जो ऋषिज हैं वो वॉचर्स, कॉस्मोस वॉचर्स जो आप जिनको बोल रहे हो, वो हमारे सप्त ऋषि हैं. और सप्त ऋषि हर कल्प में चेंज होते हैं. सो द बेसिक ऋषिज दैट स्टार्ट्स विद, जो सप्त ऋषि हैं, दे आर द वंस टू स्टार्ट विद. नाउ उनके ही डिसेंडेंट्स हैं फिर पराशर, फिर वराह मिहिर, मतलब इसी तरीके से लोग आए. तो दे आर द पीपल हु आर कनेक्टेड टू इट, दे आर द पीपल हु लिट द वे फॉर अस. नाउ हाउ हैव दे डन दैट? दे हैव डन इट थ्रू फिलॉसफी, दे हैव डन इट थ्रू, यू नो, प्रैक्टिकल एग्जांपल्स. मतलब इन माय व्यू, एंड आई हैव ट्रैवल्ड द वर्ल्ड एंड आई हैव रियली सीन अ लॉट ऑफ, यू नो, थिंग्स वेरी क्लोज, ट्राई टू एनालाइज देम. यू नो, वी गॉट अ डेफिनेशंस वेरी narrow now. We define somebody who's successful or somebody who's intelligent by a very, you know, sort of a narrow scope. But imagine the depth and the gravity of the wisdom that they had accumulated when they spoke about these things in such crisp manner that we could really just pinpoint to a particular point in history. We can't do that with our present understanding of time. सो जब आप रामायण जैसे ग्रंथ की या महाभारत की किसी की बात करते हो तो उसमें बड़े स्पेसिफिकली स्टार पॉइंट्स, फॉर एग्जांपल आप कृष्ण जन्माष्टमी कब बनाते हो? कृष्ण पक्ष के अष्टमी को बनाते हो, दैट्स कृष्ण जन्माष्टमी. उनका जन्म तभी हुआ ना, उनका जन्म आधी रात को 12 बजे कृष्ण पक्ष की अष्टमी को हुआ. एंड इट्स एज सिंपल एज दैट. तो हमारे तो त्योहारों में ही उसका एग्जाम्पल है. यू डोंट रियली हैव टू, विच इज द रीजन वाई वी फाइंड जो हमारे जितने त्यौहार हैं जो आपको मतलब ग्रंथों से मिलेंगे वो लिटरली डिराइव्ड है ना. दे आर सो डीपली कनेक्टेड दैट यू विल ऑलवेज बी एबल टू फाइंड द तिथि, विच इज यू नो अ फार मोर एक्यूरेट वे ऑफ प्रिडिक्टिंग वेयर यू वर. सो यू नो दैट तिथि इज टिपिकली द एग्जैक्ट पॉइंट इन द यूनिवर्स वेयर लेट्स से द सन वाज एंड द मून वाज 3 years ago when you were born. जब आप सोलर तिथि देखते हो एंड द करंट डे इज कैलेंडर, दैट तिथि विल बी अ सॉर्ट ऑफ एन अप्रॉक्सिमेशन. बिकॉज फॉर एग्जाम्पल टुडे इज 20th June. 20th जून को 3 साल पहले सूर्य इसी नक्षत्र में होगा, लेकिन चंद्रमा शायद थोड़े अलग नक्षत्र में होगा. बाकी सारे ग्रह और अलग नक्षत्रों में लगे, लेकिन अगर आप चंद्रमा की तिथि से जाओगे सो यू विल बी एबल टू गेट द एग्जैक्ट पोजिशन ऑफ द सन एंड द मून ऑन दैट पर्टिकुलर तिथि. सो आर दे रिलेटेड? एब्सोल्युटली आर. एंड दैट इज वाई इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू अंडरस्टैंड द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ टाइम. एक तो धर्म एक्सप्लेन कर रहा है, द सेकंड थिंग इज एक्सप्लेनिंग टाइम. जब वो काल की आप गति को समझोगे, काल के महत्व को समझोगे, इज व्हेन यू विल बी एबल टू स्टार्ट कनेक्टिंग इट विद कल्चर, विद इकोनॉमी, विद बिजनेस, विद साइंस एंड एवरीथिंग एल्स. सो हैव अनदर क्वेश्चन हियर. Okay, so, you know, this is ideally what I wanted to talk about. And I think we have a few other questions. We could possibly schedule another session with this because we're also running on time. It's almost an hour. But that's really where we are. I know there's a lot of things that, you know, I keep talking about. But let's conclude this session here. I'd like to leave you guys with a very, you know, crisp thought that the idea is not to blindly follow anything, whoever says it. जब तक आप उस चीज़ को नहीं समझे, जब तक आप उसका तथ्य नहीं समझे, जब तक आप उसकी गहराई तक उसका रेलेवेंस नहीं समझे, टिल दैट टाइम यू जस्ट अ ब्लाइंड बिलीवर, ब्लाइंड फॉलोअर. व्हेन यू स्टार्ट टू अंडरस्टैंड दैट रेलेवेंस इज व्हेन यू स्टार्ट टू मेक अ डिफरेंस इन योर ओन लाइफ. फॉर दैट यू स्टार्ट टू मेक अ डिफरेंस इन योर सोसाइटीज लाइव्स, यू स्टार्ट टू मेक अ डिफरेंस इन द इकोनॉमी दैट यू वर्किंग इन, यू स्टार्ट टू मेकिंग इट अ सस्टेनेबल सिस्टम टू स्टार्ट विद. राइट? सस्टेनेबिलिटी इज नॉट समथिंग दैट यू नो हैज अ प्रॉब्लम दैट हैज कम इन फ्रॉम मार्स. Sustainability is something very, very simple. अगर आप उस चीज को समझोगे, वो सस्टेनेबिलिटी कनेक्टेड मकर संक्रांति से भी है, वही सस्टेनेबिलिटी कनेक्टेड कृष्ण जन्माष्टमी से भी है, वही सस्टेनेबिलिटी कनेक्टेड होली से भी है. अब आप इसकी रेलेवेंस आप उस समय के क्रॉप से करोगे, जो उसकी फसल है, उस फसल से क्या पकवान बन रहे हैं, दैट इज वॉट इज रनिंग द इकॉनमी. वेन यू स्टार्ट टू अंडरस्टैंड दैट यू स्टार्ट टू गेट द रेलेवेंस ऑफ इट. भाई सस्टेनेबिलिटी प्रॉब्लम क्या है? अगर आप जहाँ रह रहे हैं उससे 20 किलोमीटर दूर सरसों की खेती हो रही है और आप यहाँ पर बाजरे का आटा खा रहे हैं, देन दैट्स अ सस्टेनेबिलिटी प्रॉब्लम. बिकॉज इफ बाजरा इज नॉट बीइंग ग्रोन ओवर देयर एंड यू आर इंपोर्टिंग बाजरा फ्रॉम समवेयर, देन यू आर अ नेट नेगेटिव टू द इकोनॉमी देयर. जो आप सॉल्व कर सकते हो बाय नॉट, आई एम नॉट सेइंग उसका बहिष्कार करो, इनफैक्ट हैव दैट एंड हैव दिस. लेकिन आप इकोनॉमी के लिए अगर कंप्लेन कर रहे हो और इस चीज को नहीं समझ पाए हो, फिर यू आर द प्रॉब्लम. And how are you able to understand that? When you start to, first of all, not call it mythology, you start to understand the relevance of the festivals. Those festivals ki relevance aapko in granthon mein milegi. In granthon mein aapka dharm ka saar milega. But all of this can be understood mathematically. So mathematically aapko kaise pata chalega ek tyohar kya hai, ye din kya hai, ye mahine kya hai, ye saal kya hai. That is the relevance. So science is connected mathematically to the stories in the Upanishads, the whole of Ramayana, Shiva Purana, Mahabharata, Bhagavad Gita, which is probably the most phenomenal book that you'll ever read. Religion is something which is very, very recent. These books are immense, they're deep, they're timeless. So I would request everyone to follow it very scientifically, with a scientific temper. Isme bhasha ka kam relevance hai, sochne ka zyada hai. So aap please khule man se sochiye, isko dekhiye, samajhiye aur apna uthan kijiye. Thank you very much. Hanji.